अध्याय 20। भारत में लौह प्रयोग की प्राचीनता। उत्खनन में अनेक धातुओं की तरह भारत से लोहे की सामग्रियां भी प्राप्त हुई हैं। इसका प्रयोग भारतीय समाज में एक क्रांति का जन्मदाता कहा जा सकता है, क्योंकि लोहा एक कठोर धातु है जिससे मनुष्य अपने लिए कठोर भूमि, वन, आक्रामक पशुओं और मनुष्यों से उत्पन्न संकट को टाल सकता था। वह अपने बसाव के लिए जंगलों को काटकर, ऊंची नीची भूमि को तोड़कर, समतल बनाकर अपना स्थायी निवास बना सका होगा। इसमें आने वाले हिंसक पशुओं के वध की सुविधा भी इसके कठोर औजारों से मिली होगी। अपनी सुरक्षा में दूसरों कबीलों द्वारा उत्पन्न की गई कठिनाई को आयुधों के माध्यम से रोकने में मनुष्य समर्थ हुआ होगा। कठोर भूमि को इसी के फाल या टुकड़ों की सहायता से तोड़कर वह कृषि कार्य करने तथा इससे बनी सामग्रियों और उपकरणों द्वारा उत्पादन को विकसित करने में सहायता लिया होगा। इसका परिणाम यह हुआ होगा कि व्यवस्थित समाज की स्थापना की ओर मानव लौह के प्रयोग के साथ ही मुड़ा होगा। साथ ही अपनी बढ़ती जनसंख्या के विस्तार के लिए दूसरे कबीलों की भूमि अधिग्रहण करने तथा उनको भगाने में इसके प्रधानों एवं राजाओं को इसके बने सलाखों द्वारा बहुत सुविधा रही होगी, जिसके कारण उनको अपने राज्य को स्थायित्व देने में सफलता मिली होगी। हिंसक पशुओं से अपने जीवन को सुरक्षित रखने तथा शिकार जैसे मनोरंजन की क्रियाओं को करने एवं पत्थरों के कठोर छाती पर अपनी कल्पना के अनुरूप भावों को उकेरने और अंकित करने में भी इसे सहायता मिली होगी, जो पीछे कला के स्वरूप में आकलित किया जाने लगा। इस प्रकार सभ्यता का विकास, जो प्रथम नगरीकरण के बाद थोड़ा रुका था, यह लोहे के प्रयोग के द्वारा अब नवीन गति से विकसित हुआ। इसी से इसे द्वितीय नगरीकरण की देन मानते हैं। पर यह जानना आवश्यक है कि भारत में इसका प्रयोग किस क्रम में और कब से प्रारंभ हुआ। इस प्रश्न के समाधान में हम डेनमार्क के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष सीजे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित सभ्यता के त्रिसोपनी विकास की बात तकनीकी इतिहास के प्रारंभ में देखते हैं। उनके अनुसार मानव ने पहले पाषाण, फिर कांस्य और तबलह सामग्रियों के निर्माण और कौशल के प्रयोग का प्रारंभ किया। पर यह उनका विचार सर्वदेशी नहीं माना जा सकता। परिस्थिति और आवश्यकता ने यही एक क्रम सर्वत्र नहीं स्वीकार किया है। जहाँ सामग्रियों की उपलब्धता थी, लोगों में निर्माण की क्षमता थी, वहाँ परिस्थिति के अनुरूप उन्होंने आवश्यकता को महत्व दिया और जिस कौशल को उचित समझा उसे बिना किसी पूर्वापर क्रम के स्वीकार कर लिया। दूसरा प्रश्न यह है कि इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था तथा वहाँ से यह किस क्रम में चलकर भारत पहुँचा। इस संबंध में दो मत उभरे हैं। पहला यह कि यह विदेशी प्रभाव में बाहर से आयातित तकनीक की देन है। दूसरा मत यह कि लौह तकनीक का विकास स्थानीय था। जो पहला मत है विदेशी प्रभाव से आयात, इसके अंतर्गत अनेक बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। पहला जो बिंदु है लौह तकनीक के सबसे प्रारंभिक चरण का प्रमाण मिस्र के फेराव राजाओं तथा मितानी शासकों द्वारा लौह उपकरणों के भेजने संबंधी पत्र व्यवहार को माना जाता है। ये पत्र लगभग तीसरी सहस्राब्दी के हैं। जो दूसरा बिंदु है, सामान्य रूप से यह माना जाता है कि सर्वप्रथम हित्ती लोग ही लौह प्रयोग की महत्ता और तकनीक से परिचित थे, जिसे अपने ही देश में उन्होंने सीमित रखा। इनका काल लगभग 1800 से 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। पड़ोसी देश इसके कौशल के ज्ञान से तब अनभिज्ञ थे। 1200 ईसा पूर्व में जब हित्ती साम्राज्य का पतन हुआ, तब यहाँ के तकनीशियन या इस कौशल के जानकार अपनी जीविका की खोज में सीमा के बाहर निकले। तब इसका कौशल ईरान, बलूचिस्तान, जो आज का पाकिस्तान वाला भाग है, होते हुए भारत भूमि के पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचा। यहाँ से यह फैलता हुआ उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी भारत में आया। तीसरा बिंदु यह अनुमान लगाया गया है कि ईरान के निक्रोएसिकसव में लोहे उपकरणों का प्रयोग 1200 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में रहा होगा। यहीं से आज के पाकिस्तान अधिकृत बलूचिस्तान पहुँचा, जहाँ इसका प्रयोग होने लगा। वहाँ से बढ़ता भारत के पश्चिमी सीमा प्रदेश पर स्थित गांधार में लगभग 900 से 600 ईसा पूर्व में इसका प्रयोग हुआ होगा। वहाँ से यह बढ़ता हुआ भारत के अन्य क्षेत्रों में पहुँचा होगा। इसी से व्हीलर ने भारत में लोहे का प्रयोग का श्रेय ईरान के हाखा मनीषी शासकों को दिया है, जिनके भारतीय अभियान क्रम में भारतीयों ने यह तकनीक उनसे सीखी। जो चौथा बिंदु है यह ऋग्वेद तथा अवस्था के समय का साम्य तथा 1365 ईसा पूर्व के बोगाच कोई अभिलेख में आए वरुण, मित्र, मासात्य, इंद्र आदि देवताओं के नामों तथा किक्कुली अभिलेख में गिनती एक, पंच, सप्त का संस्कृत से समानता के कारण तुर्क में निस्तान और वैदिक आर्यों की भाषा, संस्कृति और धर्म की एक रूपता माना जाता है। मितानी तथा हत्ती भी आर्य थे, अतः आर्यों के साथ यह तकनीक भारत में आई। ऋग्वेद में प्रयुक्त अयस शब्द की व्याख्या लव धातु के संदर्भ में करके M.M. बनर्जी ने इसकी पुरातनता भारत में ऋग्वैदिक काल से प्रमाणित किया है, पर ऊपर के तर्क मान्य नहीं प्रतीत होते, क्योंकि भारत में लव युग का आगमन 900 ईसा पूर्व में मानना तथा इसके चलन का श्रेय ईरानी आक्रमणकारियों को देना पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर उचित नहीं बैठता। विभिन्न क्षेत्रों में किए गए उत्खनन से प्राप्त सामग्रियों के आधार पर इसकी प्रमाणिकता पुष्ट नहीं होती। जैसा आगे सुनेंगे, भारतीय साहित्य में लोहे के ज्ञान की जानकारी भी इसको प्रमाणित नहीं करती। वैदिक साहित्य में लोहे के प्रयोग का ज्ञान भी इस संभावना को नकारता है। दूसरा यह कि ऋग्वेद में आए अयस शब्द का अर्थ लोहा ही था संदिग्ध है, तथा आर्य भारत में बाहर से आए और इस धातु का प्रयोग बाहर से यहाँ लाए यह मान्य नहीं है। आर्य भारतीय सभ्य लोगों का संबोधन था, किसी जाति का नहीं। जो दूसरा मत है, लव तकनीक की स्थानीय उत्पत्ति, इसके लिए साहित्यिक तथा पुरातात्विक दोनों संदर्भों की व्याख्या के बाद ही हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत आर्यों के ग्रंथ ऋग्वेद में प्रयुक्त अयस शब्द का संदर्भ लव से लेकर यह प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है कि आर्यों को इस समय लोहे का ज्ञान था। M.M. बनर्जी ने 1940 ईस्वी के अपने लेख में ऋग्वेद में लोहे के विवरण होने की बात स्वीकारी है। अयस का अर्थ उन्होंने गाढ़े रंग, प्रखरता तथा तकनीक के आधार पर लौह माना है। अयस शब्द का प्रयोग इस संदर्भ में लगभग 10 बार होना लोहा के लिए माना गया है। उनके अनुसार अयस से इंद्र के अश्व के रंग की समता, बलवान व्यक्ति के हाथ की समता, तीक्ष्ण धार वाली अयस के तलवार से तथा योद्धा के पांव के कटने पर अश्विनी कुमारों द्वारा अयस की सहायता से उसे जोड़ा जाना आदि साक्ष्यों का संदर्भ इस ग्रंथ में होना इसकी पुष्टि का बोधक माना जाता है। कुछ पुरावेद तर्कों के आधार पर लव तकनीक के प्रयोग की बात स्वीकार करना उचित नहीं ठहराते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की डॉक्टर विभा त्रिपाठी ने इन तर्कों को मजबूत नहीं माना है, क्योंकि इंद्र के घोड़े का रंग अयस, अयस की तलवार और टूटे पैर जोड़ने के लिए अयस का प्रयोग सामान्य धातु के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, न कि लोहे के लिए। उत्तर वैदिक काल में कृष्ण अयस और लोहित अयस शब्दों का प्रयोग हुआ है। यह लोहे और तांबे के लिए क्रमशः प्रयोग किया गया प्रतीत होता है। इससे स्पष्ट है अयस का अभिप्राय धातु विशेष से था। यह जिस रंग का होता था उसके लिए वह विशेषण इसमें जोड़ा जाता था। यहाँ लोहे के रंग से तांबे को अलग करने हेतु नए शब्दों का प्रयोग हुआ है। जब लोहे का ज्ञान हुआ तो इसके लिए भी अयस का ही प्रयोग होने लगा। तांबा लाल होता है और लोहा काला। इसी से कृष्ण तथा लोहित विशेषणों को भिन्नता स्थापनार्थ यहाँ जोड़ा गया होगा। डॉक्टर विभा त्रिपाठी का मानना है कि किसी भाषा में नया शब्द नवीन खोजों के बाद ही व्यवहारित होता है, अतः अयस का प्रयोग पहले सामान्य धातु या तांबे के हेतु प्रचलित रहा होगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर ललन जी गोपाल के अनुसार ऋग्वेद का अयस किसी विशेष धातु के अर्थ में प्रयुक्त न होकर सामान्य धातु के लिए प्रयोग किया जाता होगा। यजुर्वेद, अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण में लोहे के फाल का प्रयोग हल में किए जाने का उल्लेख है। लगता है जब लोग कृषि की ओर बढ़ने लगे तो लोहे का प्रयोग कृषि औजारों के लिए विशेष रूप से व्यवहारित हुआ है, क्योंकि कठोर धातु होने के कारण इसके उपकरणों से भूमि को तोड़कर कृषि योग्य बनाने तथा फसलों को काटने का काम लिया जाता होगा कि बढ़ती जनसंख्या के खाद्य की समस्या हल हो सके। इसी से कृष्ण यजुर्वेद में 6 तथा 12 बैलों द्वारा हल जोते जाने का उल्लेख है। यह काल ईरान और भारत के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बहुत पहले था। अब धार्मिक क्रियाओं और मान्यताओं में भी लोहे को स्थान दिया जाता था। अथर्ववेद में लोहे के ताबीज बनाने का उल्लेख मिलता है। आगे बौद्ध और जैन साहित्य में भी अयस के प्रयोग का ज्ञान मिलता है। वहाँ अयस शब्द तांबा, लोहा आदि धातुओं के लिए प्रयोग हुआ है। इस विवेचन से ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक काल में लोहे का प्रचलन था, भले ही ऋग्वैदिक युग के अंतिम चरण में रहा हो। आर्य लव तकनीक से परिचित थे, तभी उत्तर वैदिक ग्रंथों में दो नए शब्दों कृष्ण अयस तथा लोहित अयस का प्रयोग हुआ है। अतः 1000 ईसा पूर्व में भारत में लोहे का प्रयोग मध्य क्षेत्र में होने का ज्ञान इस आधार पर प्राप्त होता है। इसी से ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कृषि उपज के नियंत्रण में वैश्यों का उल्लेख किया गया है। यह तभी संभव था जब उपकरणों के सहारे कृषि विकसित स्थिति में रही हो। अतएव यह माना जा सकता है कि लौह तकनीक का विकास भारत में स्वतंत्र तथा स्थानीय रूप से हुआ था। जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं इसके लिए आवश्यक है क्षेत्रीय आधार पर समकालीन पुरास्थलों से प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन करना। इस क्रम में डी एन शाही, दिलीप चक्रवर्ती आदि ने अलग अलग उत्खनित पुरास्थलों का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला है। इस समय भारत में अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में संस्कृतियां विकसित हो रही थी। तभी 1000 ईसा पूर्व या उससे भी पहले लोहे के प्रयोग का साक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होता है। इसके लिए भारत को निम्न भौगोलिक क्षेत्रों में बांटकर पुरातात्विक उपलब्धियों का अध्ययन किया जा सकता है। जो पहला भौगोलिक क्षेत्र है यह पश्चिमोत्तर क्षेत्र है। दूसरा उत्तरी भारत गंगा घाटी का ऊपरी क्षेत्र है। तीसरा जो है मध्य निम्न गंगा घाटी या पूर्वी भारत का क्षेत्र है। चौथा है मध्य भारत मालवा और विदर्भ का क्षेत्र। और पांचवा जो क्षेत्र है यह दक्षिण भारतीय क्षेत्र है। पश्चिमोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत प्राचीन पश्चिमोत्तर भारत में वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तथा ईरान का क्षेत्र सम्मिलित था। इसके उत्खनित स्थलों से लौह प्रयोग का ज्ञान प्राप्त होता है। कार्बन 14 तिथि के आधार पर इनका ज्ञान 1100 से 1000 ईसा पूर्व के बीच प्रमाणित होता है। ईरान में लोहा सर्वप्रथम सियाल के कब्रगाह एबी से प्राप्त हुआ है। पर समाधानों से बहुत ही कम मात्रा में लौह उपकरणों के मिलने से यह इनकी प्रारंभिक अवस्था का सूचक है। ताम्र के खंजरों को सजाने के लिए लोहे की छोटी छोटी कीलों का मुठिया में प्रयोग होना जान पड़ता है। ये तब बहुमूल्य सामग्रियाँ रही होंगी। कब्रगाह भी जिसमें अपेक्षाकृत अधिक उपकरण मिले हैं इसके आधार पर इसकी तिथि 700 से 900 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। मध्य एशिया के पड़ोसी राज्यों में कुछ सांस्कृतिक केंद्रों पर अल्प मात्रा में प्राप्त लौह उपकरण भारतीय लौह उपकरणों से भिन्न आकार प्रकार के प्राप्त हुए हैं जिनकी तिथि 1100 से 1000 ईसा पूर्व के बीच आंकी गई है। ये इतनी उन्नत दशा में नहीं दिखते कि भारत में लौह तकनीक के प्रचलन का हेतु इन्हें माना जाए। इससे भारत में स्वतंत्र लौह तकनीक के विकास की बात स्पष्ट होती है क्योंकि इस काल में लौह उपकरण भारत के विभिन्न पुरास्थलों से अपने क्षेत्रीय तकनीकी विशेषता में उपलब्ध हैं। जो दूसरा भौगोलिक क्षेत्र है यह उत्तरी भारत गंगा घाटी का ऊपरी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में चित्रित धूसर मृदभांडों वाली संस्कृति के साथ लोहे के उपकरण उत्खनन से मिले हैं। इनके पुरास्थलों की संख्या कम से कम 725 आंकी गई है। अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, नोह, अल्लापुर जो मेरठ में है, अछत, रोपड़, हस्तिनापुर, मथुरा, श्रावस्ती, कांपिल्य आज से लौह प्रयोगता सांस्कृतिक स्तरों का पता चला है। इन स्तरों का तिथिक्रम चित्रित धूसर मृदभांडों PGW के कार्बन तिथि के आधार पर 8वीं-9वीं सती ईसा पूर्व निर्धारित की जाती है। यदि इस समय से ये प्राप्त होते हैं तो निश्चय ही इसके पहले से इनका चलन रहा होगा। इस आधार पर ईसा पूर्व 1000 वर्ष पहले ही लौह का प्रयोग इस क्षेत्र में आंका जा सकता है। नोह जो राजस्थान में है से लोहे के छोटे छोटे टुकड़े चित्रित धूसर मृदभांड PGW के पूर्व के स्तर तथा कृष्ण लोहित मृदभांड BRW से अयस्क के साथ मिले हैं जो ताम्र पाषाणिक चरण के हैं। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि लौह की तकनीक ताम्राश्म काल से ही ताम्र उपकरण बनाने की प्रक्रिया के साथ प्रारंभ हो गई थी। कालांतर में चित्रित धूसर मृदभांड पेंटेड ग्रेवेयर के निम्नतम चरण से इसका विकास प्रारंभ हुआ। निम्न चित्रित धूसर मृदभांडों की तिथि 1000 ईसा पूर्व मानी गई है। इसके पूर्व हुए कृष्ण लोहित मृदभांड BRW की तिथि लगभग 1100 ईसा पूर्व रही होगी जब लोहे का प्रचलन शुरू हुआ होगा। यद्यपि अब से लगभग 3 दशाब्द पूर्व काले उपदार मृदभांडों ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के साथ उत्खनन में सर्वत्र लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर काले उपदार मृदभांडों की कार्बन तिथि 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। पर जब से नई उपलब्धियां चित्रित धूसर मृदभांड के साथ जुट गईं तब से इनका प्रचलन बहुत पहले होना स्वीकार किया गया। जैसा कि मैंने पहले बताया चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा के लोग चावल, जौ, गेहूं आदि खाद्यान्नों का प्रयोग करते थे। इसके लिए लोहे की बनी खुरपी, कुल्हाड़ी, कुदाल, दरातियां आदि का प्रयोग किया जाता था जो उत्खनन में मिले हैं। साथ ही चाकू, फलक, सरिया, चिमटा, कीलें, मछली पकड़ने की वंशी, तीर, भाले, कांटे आदि की प्राप्ति से लगता है कि तब व्यवस्थित भोजन का बर्तन लोहे का बनाया जाता था। ये लोग भेड़, भैंस, सुअर, हिरण, बकरी आदि पालते थे। अपने आवास के लिए बांस और बल्ली को जोड़कर झोपड़ा या कच्चा भवन बनाते थे। संभवतः बसुला, कील, सरिया, कांटे आदि का प्रयोग इसके निर्माण में किया जाता होगा। मिट्टी के अनेक प्रकार के बर्तन भी इसी स्तर से प्राप्त हुए हैं। इनमें प्याले, तस्तरियां, भांडों की गणना की जा सकती है जो चाक द्वारा बनाए जाते होंगे। खिलौने के लिए मिट्टी की पशु मूर्तियां, मनके भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही हाथी दांत, सीपी, कांच, सिंह आदि की भी सामग्रियां मिली हैं। अतरंजी खेड़ा से कपड़े के छाप बर्तनों पर अंकित मिले हैं जो वस्त्र उत्खनन के चलन के बोधक हैं। इससे इनकी जीवन विधि का ज्ञान प्राप्त होता है। जो तीसरा भौगोलिक क्षेत्र है मध्य निम्न घाटी या पूर्वी भारत का है, जिसमें लौह तकनीक से जुड़े आदिम ताम्र केंद्रों में ताम्रास्मी चरण से ही लौह तकनीक का प्रादुर्भाव होता है। पश्चिमी बंगाल में पांडुराजडीबी तथा हाथीगढ़ी से उत्तरी कृष्णमार्जित मृदभाण्डों से पूर्व कृष्ण लोहित मृदभाण्ड के साथ 1000 ईसा पूर्व के आसपास ताम्रास्मी चरण से लौह प्रयोग का प्रारंभ मिलता है। यह चरण उत्तरी कृष्णमार्जित मृदभाण्ड से पहले का है। मध्य गंगा घाटी में उत्तरी कृष्णमार्जित मृदभाण्ड के पूर्व चरण से नरहन, सोनेपुर, चिरांद तथा राजघाट से उत्तरी कृष्णमार्जित मृदभाण्ड के पूर्ववर्ती चरण कृष्ण लोहित मृदभाण्ड के ऊपरी सतह से लौहमल मिला है। आयरन स्लैग कौशाम्बी से कृष्ण लोहित मृदभाण्डों के साथ सीमित मात्रा में लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिसकी तिथि जी.आर. शर्मा ने 1100 ईसा पूर्व माना है। 1996 में 97 में मिर्जापुर के राजा नल का टीला नामक पुरास्थल से उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन के डॉक्टर राकेश तिवारी ने कृष्ण लोहित मृदभाण्डों के साथ प्राप्त ढलवा विधि से उपकरणों के 1300 ईसा पूर्व माना है। कार्बन 14 से भी इस चरण की यही तिथि ज्ञात होती है। इस साक्ष्य की प्रमाणिकता हेतु इन्होंने चंदौली के कर्मनाशा नदी के बाएं तट पर स्थित मलहर नामक पुरास्थल का उत्खनन प्रारंभ किया था। यहाँ से मलहर 2 तथा कृष्ण लोहित मृदभाण्ड चरण से ढाली हुई लोहे की हंसिया तथा कीले प्राप्त हुई हैं। इनकी समानता राजा नल के टीले से प्राप्त मृदभाण्डों के आधार पर की जा सकती है। कृष्ण लोहित तथा काले पुते मृदभाण्ड ब्लैक स्लिप्ड वेयर के साथ प्राप्त उपकरणों के निर्माण स्थल का प्रमाण भी इस पुरास्थल से लगभग 500 मीटर दक्षिण लौहमल आयरन स्लैग के ढेर वाले टीले के उत्खनन से भट्ठी के रूप में प्राप्त हो चुका है। इसके 5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में एक गिरुआ पहाड़ है, जहाँ से कच्चा लौहमल लाकर उसे पकाकर अन्य स्थानों को भेजा जाता होगा। इस क्षेत्र में लौहमल के अनेक ढेर पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं, अतः लौह प्रचलन के तिथि और प्राचीन होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आहाड़ क्षेत्र का एक प्रमुख पुरास्थल है जो इसी क्षेत्र में है, जो राजस्थान के उदयपुर जिले में है। यहाँ से उत्तरी कृष्णमार्जित मृदभाण्ड के नीचे कृष्ण लोहित मृदभाण्डों के 3 उपकालों ABC में 1B से MD शाही ने लौह उपकरण निकाला है, जो 1C से अपेक्षाकृत अधिक संख्या में मिला है। इस आधार पर यहाँ इसकी तिथि 1300 से 1400 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है, किंतु कुछ विद्वान इससे सहमत नहीं है। संकलिया ने यहाँ उपकरणों को उत्तरी कृष्णमार्जित के साथ माना है, पर निश्चित ही यह तिथि 1000 ईसा पूर्व से प्राचीन रही होगी। जो चौथा क्षेत्र है मध्य भारत है, मालवा और विदर्भ का क्षेत्र है। मालवा और विदर्भ के क्षेत्र वर्तमान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र प्रांतों से संबंधित हैं। यहाँ कई पुरास्थलों का उत्खनन किया गया। इनमें मुख्य हैं नागदा और एरण। इसके अतिरिक्त प्रकाश, उज्जैन, कायथा आदि भी हैं। इनसे ज्ञात होता है कि ताम्रास्मी युगीन सभ्यता के अंत के बाद कृष्ण लोहित मृदभाण्ड ब्लैक एंड्रेड वेयर की संस्कृति का विस्तार होता है। इस प्रकार के मृदभाण्डों के साथ ही कुछ नए प्रकार के भांड भी पाए जाते हैं, जैसे काले पुते भांड, ब्लैक स्लिप डिवेयर आदि, पर अधिक प्रचलित थे कृष्ण लोहित ही। यह ऐतिहासिक युग का प्रारंभिक चरण था, जिस समय ताम्रास्म उपकरणों के साथ लोहा जुट गया। लोहे के उपकरण जो नागदा से पाए गए हैं उनमें विशेष उल्लेखनीय हैं वाणाग्र, चौड़ी कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी की मुठ, दोनों ओर धार वाली कटार, कील, चाकू, भाले का अगला भाग अंगूठी, हंसिया, छल्ला, चम्मच आदि इसी प्रकार के उपकरण एरण से भी प्राप्त हुए हैं, पर इनके साथ ताम्रास्म प्रकार के सूक्ष्म उपकरण भी मिले हैं। यहाँ के लोग कच्ची ईंटों के मकानों में रहते थे। ये वस्त्र का निर्माण अवश्य करते होंगे, तभी पक्की मिट्टी का तकुआ तथा करघे के गोल चक्के की तरह की आकृति की प्राप्ति यहाँ से होती है। ये कांच की चूड़ियाँ, हाथी दांत के खिलौने, रत्नों के मनके, पक्की मिट्टी के खिलौने और गुड़िया भी बनाते थे। अभी यद तक यह माना जाता है कि ताम्रास्मयुगीन संस्कृति के बाद इस क्षेत्र में ऐतिहासिक संस्कृति तत्काल प्रारंभ हुई और उसमें लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। पर इन्हीं क्षेत्रों में अनेक पुरास्थलों के उत्खनन से अब यह सिद्ध होता है कि ताम्रास्म संस्कृति और ऐतिहासिक संस्कृति के कालक्रम के बीच में कुछ अंतराल था। इसी अंतराल में लोह प्रयोक्ता संस्कृति विकसित थी। M.R. बनर्जी ने इसकी तिथि 800 ईसा पूर्व के आसपास बताया है, पर यहाँ से प्राप्त लौह सामग्रियों के स्तर से मिलने वाली अन्य सामग्रियों के रेडियो कार्बन तिथियों के तीन निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं। ईसा पूर्व 1140 प्लस माइनस 110, TF 326, ईसा पूर्व 1270 प्लस माइनस 110, TF 324 तथा ईसा पूर्व 1239 प्लस माइनस 71, P 525। इन आधारों पर यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि किसी भी स्थिति के यहाँ लोहे का प्रयोग 1100 ईसा पूर्व के बाद नहीं माना जा सकता। यही बात डी के चक्रवर्ती भी कहते हैं कि यहाँ से प्राप्त लौह उपकरणों को अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा पहले का माना जा सकता है। इन्होंने लगभग 1200 ईसा पूर्व इसकी तिथि माना है। यूँ तो इसी के पास राजस्थान के आहाड़ नामक पुरास्थल के उत्खनन में प्रथम काल के द्वितीय स्तर से लोहा और उसका धातुमल मिला है। यह एक स्थल से नहीं बल्कि पांच निक्षेपों से प्राप्त हुआ है। इस आधार पर इस क्षेत्र में लौह प्रयोक्ता संस्कृति का काल लगभग 1500 ईसा पूर्व माना जा सकता है। जो पांचवा क्षेत्र है यह दक्षिणी भारतीय क्षेत्र है। दक्षिण भारत में बृहद पाषाणिक समाधियां बड़ी संख्या में मिली हैं तथा इनका विस्तार ऐतिहासिक युग तक चला है। इनके उत्खनन में अन्य सामग्रियों के साथ लोहे के उपकरण भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। इनका विस्तार क्षेत्र आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु में देखा जा सकता है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल हैं कर्नाटक के धारवाड़ जिले का हल्लूर, जहां से हाल ही में लौहयुगीन पाषाणिक बस्ती का ज्ञान प्राप्त हुआ है जैसा अब तक अप्राप्त था। महाराष्ट्र में चूनापानी, भामी, भागीमारी, खाया, तकलाघाट आदि विदर्भ के क्षेत्र पुरास्थलों से भी इस प्रकार पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। दोनों से लगभग समान उपकरण ही प्राप्त हुए हैं। यहाँ के बृहद पाषाणिक समाधियों से प्राप्त होने वाले प्रमुख लौह उपकरण हैं कुल्हाड़ी, फावड़ा, गैंता, बसुला, हंसिया, छेनी, बणाग्र, भाला, कटार, चाकू, त्रिशूल, दीपक के लटकाने के अंकुड़े आदि। इस प्रकार के लगभग 33 लौह उपकरण मिलते हैं। इनमें प्राप्त उपकरणों के आधार पर लगता है कि ये युद्धप्रिय लोग थे या इनको सुरक्षा की दृष्टि से सतर्क रहना होता था। किसी इनका मूल उद्योग था तभी कुल्हाड़ी, फावड़ा, हंसिया आदि का प्रयोग करते थे। शिकारी भी शिकार के लिए भाला, कटार और त्रिशूल का उपयोग करते होंगे। इनका घर बांस, मिट्टी आदि का बना होता था क्योंकि छेनी, बसुला, रुखानी आदि की प्राप्ति इसका परिचायक है। इन क्षेत्रों में लोहे का प्रयोग व्हीलर के अनुसार 33 शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ होगा, पर नवीन तथ्यों के प्रकाश में आ जाने तथा रेडियो कार्बन तिथि के सहारे इसका काल निर्धारण 1000 ईसा पूर्व ही निर्धारित किया जा सका है, जिनकी रेडियो कार्बन तिथियाँ 700 ईसा पूर्व बताई गई हैं। इनके आधार पर भी 1000 ईसा पूर्व ही सही बैठता है क्योंकि इनका प्रचलन हुआ होगा और विकास बाद में। तकनीक। इसके संबंध में डॉक्टर विभा त्रिपाठी का मानना है कि प्राचीन भारत के पूरे क्षेत्र का आपसी संबंध संभव नहीं था, अतः यदि एक ही कालखंड में प्रत्येक क्षेत्र में लोहे की जानकारी हुई तो यह निश्चित ही विकास का स्वतंत्र प्रणाली रही होगी। यह विवाद है कि बिना तकनीकी ज्ञान के लौह उपकरणों का निर्माण संभव नहीं है। इस संबंध में CA स्मिथ का मानना है कि लौह अयस्क की अधिकता वाले क्षेत्र में धातु विघलन की प्रक्रिया से अकस्मात लौह निर्माण संभव हुआ। स्मिथ की इस संभावना को आगे बढ़ाया RF टाइलर और R पॉर्डिस ने। इनका मानना है कि बिना धातु प्रगलन में निष्णात व्यक्ति भी लौह उपकरणों का निर्माण कर सकता है। तांबा 1040 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है जबकि लोहा 1500 सेल्सियस या इससे अधिक पर। प्राचीन भट्टियों में इतना तापमान पैदा करना कठिन था, अतः अर्ध पिघले धातु को भट्टी में धातुमान के साथ ब्लूम के रूप में प्राप्त कर निहाई पर पीट कर इसे अशुद्धियों इसमें से अशुद्धियों को निकालकर मनचाहा आकार प्रदान करते थे। इस प्रकार पीटकर इच्छित वस्तुएं बनाई जाती थीं। जीवन दृष्टांत एथनो आर्कियोलॉजी से भी यह बात सिद्ध होती है कि आदिवासी समाज आज भी भट्टी में अधिक तापमान नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि इससे विगलित होकर धातु के बह जाने का भय रहता है। जो निष्कर्ष है, ऊपर के विवेचन के आधार पर भारत में लौह युग के संबंध में निम्न बातें ज्ञात होती हैं। पहला, लोहे का प्रयोग भारत के प्रत्येक क्षेत्र में ताम्राश्म युगीन संस्कृति के बाद और ऐतिहासिक काल में पूर्ण होने लगा था। दूसरा, यह कहना कि एशिया माइनर से इसकी कला ईरान, बलूचिस्तान, गांधार, पश्चिमी से उत्तरी भारत और फिर मध्य भारत से होकर पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पहुँची पूर्णतया अप्रमाणिक है, क्योंकि उस जिस समय मध्य एशिया में इसका चलन था, तभी भारत के भी विभिन्न भागों में यह विकसित था। तीसरा, लोहे के निर्माण तकनीक से लोग यहाँ परिचित थे, तभी लोहमल और उसको शुद्ध करने की भट्टियाँ यहाँ मिली हैं। राजस्थान से लोहा इसी से यहाँ स्वयं इसकी अपनी तकनीक शोधन तथा निर्माण की रीत विकसित हुई होगी। चौथा जो मत है, लोहे के रहस्य को हित्तियों के साथ जोड़ने का समय 1800 ईसा पूर्व से प्रारंभ माना जाता है। इसी के आसपास भारत में भी राजस्थान के आहार नामक पुरास्थल से इसकी प्राप्ति इस मत को स्वतः धराशायी कर देती है। जो पांचवा मत है, लोहे का प्रयोग ऐसी एक सीधे क्रम या तकनीक के क्रमशः विस्तार क्रम में आगे की ओर हुआ, यह मानना भ्रमात्मक है। सर्वत्र आवश्यकता के अनुरूप तकनीक विकसित हुई और आवश्यक उपकरणों का निर्माण परिस्थिति के अनुसार प्रारंभ हुआ। जो छठा है, काले उपदार मृदभांडों के साथ लोहे के प्रारंभ को जोड़ने की बात अब नवीन पुरास्थलों के उत्खनन से बेकार हो चुकी है। इनके बहुत पहले चित्रित दूसरे मृदभांडों की संस्कृति वाले लोग लोहे का व्यापक प्रयोग करते थे। लौह तकनीक के विकास ने ही हमारे कृषि, आवास, उद्योग धंधे, सुरक्षा व्यवस्था, व्यापार और साम्राज्य विस्तार को प्रभावित किया। आठवां मत है द्वितीय नगरी क्रांति, जो लगभग सातवीं से छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई, उसके पीछे कारण था विकसित लौह उपकरणों का प्रयोग, जिसके द्वारा बसाव को गति और विस्तार ही नहीं मिला बल्कि निवासियों की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा विकास को मार्ग मिला। इसी का परिणाम होगा कि राजगीर ने नगर की पाषाण परिखा तथा खाई बनी होगी तथा पक्की ईंटों की ओर बढ़ते कदम भी इसी की देन रही होगी। नौवां जो मत है, अनेक तकनीकी विकास इस धातु के कारण संभव हुआ, जैसे लोहा दक्षिणी भारत के खानों से निकालना, साफ करना, लौहमल का जलना, कच्चे धातु की ढलाई करना तथा इससे इस्पात बनाना, क्योंकि बरार में माहूर कारी के एक बृहद पाषाणिक समाज से एक ऐसी कुल्हाड़ी मिली है जिसमें 6% कार्बन पाया गया है, जो इसको इस्पात की संज्ञा प्रदान करता है। दसवां जो मत है, भारत में लोहा के तकनीक का ज्ञान आर्यों के साथ प्रयोग में बाहर से आया अब यह मान्य नहीं है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त लौह खनिज के सहारे यहाँ लौह उपकरणों का निर्माण हुआ, न कि विदेशी माने जाने वाले आर्यों द्वारा लाए गए तकनीक से। इसका सर्व प्रबल तर्क है कि थाईलैंड में बनैची स्थल से 1600 से 1200 ईसा पूर्व के बीच ढला हुआ लोहा मिला है। 11वां जो मत है, भारत में लोहा पहले प्रयुक्त हुआ, बाद में सीमावर्ती पड़ोसी उपमहाद्वीपों ईरान, बलूचिस्तान, स्वात आदि में तिथि क्रम के आधार पर भारत के भीतरी भाग में लौह उपकरण यहाँ से प्राप्त उपकरणों के पूर्व बनने लगे थे। 12वां जो मत है, सिंधु घाटी में चालकोपाइराइट नामक ताम्र अयस्क का प्रयोग किया गया था। इस सभ्यता के कुशल कलाकार भी लौह को पूर्णता अलग नहीं कर पाते थे। रंगपुर के उपकरणों में 1.88% तथा बाद की ताम्र निधियों से प्राप्त धातुमल से 48% तथा उपकरणों में 6.48% लोहा पाया गया है। संभवतः ऐसी ही दशा में ताम्राश्मी संस्कृतियों से बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य भारत, दक्षिण भारत में लौह प्रचलन का प्रारंभ हुआ, क्योंकि सबकी सांस्कृतिक विशेषताएं अलग अलग हैं। जो 13वां मत है, इन संस्कृतियों के बीच आपसी संबंध संभव नहीं था, क्योंकि भारत एक विस्तृत देश है, अतः यहाँ लौह तकनीक का क्रमिक रूप से स्वतंत्र विकास हुआ होगा। प्रत्येक क्षेत्र की अलग तकनीक होने से इस तकनीक को अन्यत्र से आयातित नहीं माना जा सकता। जो 14वां मत है, आर्यों के प्रमुख क्षेत्र सरस्वती घाटी में चित्रित दूसर मृदभांडों के अंतिम चरणों में लव की अनुपस्थिति का ज्ञान भगवानपुरा, रोपड़ आदि से सिद्ध होता है कि यदि वह संस्कृति आर्यों की थी तो वे बाहर से नहीं आए, अपितु इसका विकास उन्होंने भारत भूमि में ही किया। जो 15वां मत है। ऋग्वेद में लौह प्राप्ति की शंका भी इस तथ्य की ओर और इंगित करती है। इससे सिद्ध होता है कि भारत में लौह विकास स्वतंत्र रूप से हुआ था।